وقتلوهم حيث ثقفتموهم، تم قتل کرو ان کو جہاں بھی تم پاؤ ان کو. اب یہ کیا بات ہوئی، اس آیت کو بھی لے کے غیر مسلموں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، دیکھو جی ان کے قرآن میں کیا ہے، ان کے قرآن میں تو یہ ہے کہ جہاں پہ یہ ملے ان کو مار دو. خدا کے بندو آگے بھی تو پڑھ لو، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کس بارے میں ہے، کن کو کہا جا رہا ہے. ذرا سا بھی آپ اگلا لفظ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے. یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ کوئی بھی آپ کو کسی دن یہ آیات منہ پہ رکھ کے کہے گا یہ دیکھیں آپ کے تو قرآن میں یہ ہے، پھر ہم ایسے ہو جاتے ہیں ہائے جیسے پتہ نہیں اب ہم کتنے مطلب اپولوجیٹک ہیں، یا ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے جواب دیں. یہ آج کی ضرورت ہے کہ آپ ان آیات کو سمجھیں. تو کس کو کہا جا رہا ہے، جہاں تم پاؤ ان کو قتل کرو. اور آگے پڑھ لیتے ہیں پھر بتاتی ہوں. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے نکالا تم کو. اب یہ آیات ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت نازل ہوئی تھی یہ آیت، کہ جس میں بتایا گیا کہ یعنی صلح حدیبیہ میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے اور ان کو روک دیا گیا اور کہا گیا اگلے سال. اب اگلے سال سے جس وقت عمرہ قضا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ انہوں نے پچھلے سال تو ہمیں جانے نہیں دیا، اب اگر ہم اس دفعہ جاتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جانے دیتے ہیں نہیں جانے دیتے، یا یہ نہ ہو کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دیں، ہم جا رہے ہیں رام میں وہاں پہ وہ اپنا معاہدہ توڑ کے اور ہمارے ساتھ لڑنا شروع کر دیں تو ہم کیا کریں، پھر کیا ہم پھر جنگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، کیا ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تو پھر کہا گیا اگر وہ تم سے قتال کریں تو پھر تم بھی جہاں ان کو پاؤ تم بھی ان سے قتال کرنا، پھر تمہیں بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جنہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا تم بھی ان کو نکالو پھر وہاں سے. اور یہ آپ کسی بھی عام زندگی میں کیسے رکھ سکتے ہیں، واخری جو من ہے اس واخرا جو کو، کس کو آپ کہیں گے نکالو تم ان کو وہاں سے جنہوں نے نکالا تم کو، کیسے اس کو سمجھیں گے جب تک اس چیز کو اس بات کو اس بیک گراؤنڈ کو نہ سمجھا جائے کہ یہ ان کے لیے تھی کیونکہ انہوں نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا. بات اور فرمایا بل فتنہ تو اشد من القتل، یاد رکھو فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. فتنہ کیا چیز ہے، ایک تو پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ دیکھیں اسلام تو اتنا پیسفل ریلیجن ہے تو اس میں یہ کیسی بات ہوئی کہ ان کو قتل کرو جہاں پہ تم جہاں تم ان کو پاؤ، اور یہ تو بہت بری بات ہو گئی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہ بول فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ تو تم یہ سوچتے ہو کہ اچھا ان کو مارنا برا ہے تو فتنہ کیا ہے، فتنہ تو قتل کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے فتنہ، فتنہ ہے ریلیجیس پرسیکیوشن، مذہبی جبر جس کو کہیں گے آپ. اور میں اس کو سمپل ورڈز میں آپ کو سمجھاؤں فتنہ کیا چیز ہے، فتنہ وہ ہے کہ کسی کو صرف اس لیے ستایا جائے، مارا جائے، ظلم کیا جائے، ان کی عورتوں کو کی عزتیں لوٹی جائیں، ان کو کہیں وہ محفوظ نہ ہوں، صرف کس لیے کہ وہ ایک اللہ کا نام لینے والے ہیں، یا وہ اسلام کیوں لے کر آئے ان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے. یہ ہوتی ہے ریلیجیس پرسیکیوشن کہ دین کو پریکٹس نہیں تم کر سکتے، تم اس دین پہ کیسے آ گئے، تم اس کو چھوڑو، یہ ہے ریلیجیس پرسیکیوشن، یہ مذہبی جبر. تمہارا قصور کیا، ہم کیوں تمہیں مار رہے ہیں، تم یہ کیوں ٹارچر کر رہے ہیں، تم کیوں اسلام لے کر آئے، تم مسلمان کیوں ہو، یہ ہے فتنہ. سمجھے اس کو کہتے ہیں فتنہ، یہ اتنی بری چیز ہے، یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے. اس کو کہا گیا یہ جنگ سے بھی زیادہ برا ہے، اتنی بڑی برائی ہے. کیونکہ یہ زمین کس کی ہے، اللہ کی. ہاں اس کے اوپر تو اللہ نے جو اس کا نام نہیں لیتے، ان جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ شرک کر کے اس کو گالی دیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالی کا तहम्मुल है, उसका सबर है कि वो उनको भी रहने देता है, वो उनको भी खिला रहा है पिला रहा है, लेकिन अब ये मतलब नहीं कि वो जो अल्लाह का नाम लेवा है उसको तुम पकड़ के इतना उसके ऊपर जुल्म करो सिर्फ इसलिए कि क्यों तुम अल्लाह का नाम लेते हो। ये तो हक हक ही ये था इस जमीन पे रहने का कि तुम अल्लाह का नाम लो, तुम अल्लाह के दीन पे चलो, यही हक था। लेकिन वो तो हक उससे छीनने के लिए खड़े हो गए, तो ये अल्लाह ताला को नहीं पसंद, ये नहीं उसको गवारा फिर कि ऐसे नहीं हो सकता कि तुम कोई इंसान कहता कि मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, मैं इस्लाम में एंटर होना चाहता हूँ, तुम उसके साथ वो हाल करो कि वो इसे फिर के रहे। जैसे आज आप देखें दुनिया में कितने कंट्रीज हैं जहां पे ये हो रहा है कि इस्लाम को छोड़ दो वरना तुम्हें हम ये करेंगे, तुम मुसलमान क्यों हो, यानी इतना किसी को मजबूर कर दिया जाना कि वो इस्लाम को ही छोड़ दे, इतना उसके ऊपर जुल्म करना, इतना उसको यानी गैर महफूज कर देना, इनसिक्योर कर देना, या उठा के डिटेंशन कैंप्स में डाल देना, या वहां पे ब्रेन वॉशिंग करना, या ऐसा जबर करना उनके ऊपर कि वो अल्लाह का कलिमा बोले तो उसकी जुबान खींच ली जाए। ये दुनिया में बहुत जगह, और हम आज सोचते हैं ना कैसे मक्का के अंदर होती होगी रिलीजियस परसिक्यूशन, वो अगर आपने देखनी तो आज ही देख लें, 1400 साल पहले का क्या बात करनी, आप आज देख लें आज के हालात के अंदर कैसे होती है। ये वर्स है, तुम कहते हो कत्ल बुरी चीज है, ये उससे भी वर्स है कि किसी को इस्लाम को छोड़ने पे मजबूर किया जाए, किसी को सजाएं सिर्फ इसलिए दी जाए वो मुसलमान है, बस ये उसका कसूर है। और याद रखें इस्लाम वो रिलीजन है जिसमें ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउड होके कह सकते हैं कि तमाम अदियान ये इसलिए दूसरों से दुश्मनी रखते हैं कि दूसरा किसी और मजहब से क्यों है, जबकि इस्लाम इतना टॉलरेंट है रिलीजन, सुभान अल्लाह। हालांकि इस दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह के कलमा को ही बुलंद होना चाहिए, इसके अलावा किसी और का हक नहीं है कि उसकी इबादत की जाए इस प्लेनेट अर्थ पे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कितनी टॉलरेंस है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है ला इकराह फिर दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, हम नहीं तुम्हें कहेंगे कि तुम जरूरी मुसलमान हो जाओ, हम नहीं तुम्हें इस बात पे मारेंगे कि तुम हिंदू क्यों हो, तुम क्रिश्चियन क्यों हो, तुम यहूदी क्यों हो, तुम मुशरिक क्यों हो, हम नहीं कभी तुम्हें इस बात पे मारेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने फ्रीडम दी है, अल्लाह ने फ्रीडम दी है, जो चाहे अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, जो चाहे काफिर रहे, जो चाहे मुसलमान हो जाए, जो चाहे मोमिन हो, अल्लाह ताला ने ये दी है फ्रीडम, हम तो नहीं किसी से छीनते, किसी को नहीं देखा हो किसी को मारते हुए कि मार मार के उसको मुसलमान बना रहा, तुम हिंदू क्यों हो तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं हम कहते हैं नहीं हमारे तुमने खुशी से होना है तो हो, लेकिन हम नहीं तुम्हें कहेंगे तुम अपने रिलीजन में रहो, तुम्हारा दिल कायल होता है तुम आओ, लेकिन अदरवाइज तो देखें आज दूसरे लोग अपने मजहब के नारे लगवाते हैं लोगों से कि बोलो हमारे खुदा का नाम तो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। इस्लाम ने ये कहता कि तुम किसी से जबरदस्ती किसी मुशरिक को कहोगे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे, नहीं हमें नहीं जरूरत इसकी, इस्लाम बेनियाज है इससे, पूरी दुनिया भी इस जमीन के ऊपर शिर्क करे तो अल्लाह ताला कहता है कि मुझे मेरी बादशाही में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आता, अगर पूरी दुनिया हर जिन और इंस और बूढ़ा और जवान और बच्चा मर्द और औरत सब तुम में सबसे ज्यादा गुनाहगार के दिल की तरह हो जाए तो मेरी बादशाही में कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को जरूरत नहीं है, और तुम्हें जरूरत होगी कि तुम्हारे कम होंगे किसी के तो वो चाहता है कि और हो जाए उसको पूजने वाले, तुम्हारे जिनको तुम खुदा मानते हो उनको जरूरत होगी, हमारे रब को तो जरूरत नहीं, उसके लिए तो आज सारी कायनात बिछी हुई है, जमीनों आसमान जिसके सामने इताअत गुजार है, और जो कुछ इसमें है, तो जो कोई खुशी से आना चाहे बी प्राउड कि आप मुस्लिम है, ये नहीं कि हम हाय अब बिछ गए हैं अरे ऐसे हो रहे हैं कि हाय पता नहीं हमारे कितने कसूर हो गए कि हम मुसलमान, नहीं ये वक्त है सर उठा के जीने का, ये आप सर उठा के जिए कि आप हक पे हैं, शर्मा के नहीं, झिझक के नहीं, डर के नहीं, वो फितना अशद्दु मिनल कत्ल, कोई भी फितना बर्पा करेगा तो फिर वो उसको उसका साथ मुकाबला किया ही जाएगा ना, क्या करे एक बंदा मसला ना कि वो कॉर्नर कर दिया जाए, उसको इतना मारा जा रहा है उसको कॉर्नर के, क्या वो हाथ ना उठाए, हमारा दीन ये नहीं कहता उनकी तरह ईसाइयों की तरह कि जैसे ईसाइयों के अंदर है इधर थप्पड़ तुमने मारा ना ये लो दूसरा भी गाल इधर भी मार दो, इस्लाम कहता नहीं, जिसने जो किया है उसका उसका बदला है, क्योंकि दिस इज नेचुरल इंसान, लेकिन बदला फिर उतना ही होगा, बस आगे आ रही है बात। वला तो قاتلوهم عند المسجد الحرام, और देखो इनको साथ ना लड़ना तुम पास मस्जिद हराम के, हत्ता युकातिलुकुम फी। अब ये बता नहीं रही है आपको कि ये उस वक्त की आयत है, कौन इसको आज के वक्त के अंदर लाके कह देगा मस्जिद हराम के पास लड़ना, किधर से आप फिट करोगे इसको? तो जब कोई आपके सामने ये रखे इसको कब, पूरी आयत तो पढ़ लो, मस्जिद हराम के पास ना लड़ना, तो ये किसकी बात हो रही है, कुछ सोचो तो सही। यानी अगर वो आपको ड्राइव कर दे इतना आपके साथ लड़े, तुमने नहीं लड़ना, तुमने स्टार्ट नहीं करना, यानी ये कहा जा रहा है हत्ता यू कातिलुकुम फी, यहां तक कि वो लड़े तुमसे। अच्छा अब क्या हुआ था, या आपको याद होगा अगर जिसने सीरत पढ़ी हुई है, कि सुलह हुदैबिया का जो मौका था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उमरे पे आ रहे थे, जिसमें उन्होंने रोक दिया था, तो अगर खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो इतनी कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह इनको इंस्टिगेट करें, किसी तरह इनको भड़काएं, ये कुछ ना कुछ करें, अब ये कुछ करेंगे ना तो फिर हम इनके ऊपर हमला हम करेंगे, देखा इन्होंने तो ऐसे किया था। क्योंकि जाहिर है एक हुरमत वाली जगह की हुरमत है, वहां पर वो भी उनके अंदर भी थोड़ा इतना था कि हम नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा कत्लोगारत करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना तुम लड़ो उनसे मस्जिद हराम के पास, तुम्हें अलाउड नहीं है, ये हरम है, लेकिन अगर वो तुम्हें मारे तो अब ये नहीं आपको बैठ जाओ भाई हम क्या करें, ये तो जगह की तकद्दस है, हम तो नहीं ना यहाँ पे लड़ सकते, तो इनको मारने दो हमें और आप उनको मारने दे, नहीं फिर तुम भी वापिस मारोगे। इन दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कौन है दुनिया में ये कहेगा कि हाँ हम लेट जाते हैं आओ हमें मारते जाओ, हम इतने अच्छे लोग हैं लेकिन हमने नहीं कुछ करना, कौन ऐसे करेगा? आप मुल्कों को देख लें, खुद दुनिया में मिसालें हैं, कोई एक मुल्क दूसरे के ऊपर इस तरह की कोई करता है तो दूसरा मुल्क इसे बदला लेता है या नहीं लेता? जब उसके अंदर इतनी अगर ताकत होती है तो लेता है ना, हाँ वो बेचारा खुद बिल्कुल मरा हुआ हो तो फिर नहीं लेगा, लेकिन जिस मुल्क में ताकत वो लेता है ना बदला। तो फिर मुसलमानों को बुरा करने की क्या बात है कि वो क्यों कहा गया उनके कुरान के अंदर, कहा जा रहा है भाई जब तुम्हें निकालोगे तुम भी इनको निकालो, वो तुम्हें मारेंगे तो तुम भी मारो लो उनको। हालांकि पिछले 13 साल मक्की जिंदगी के कोई आयत बता दें कि जिसके अंदर कहा गया हो कि आपने भी मारना, या जिसमें मुसलमानों ने मारा हो, वो सबर के दिन थे ना। और अब जब मुसलमानों के पास ताकत आ गई है, इतने कम अज कम एस्टेब्लिश हो गए, उनसे तो कम ही थे ताकत में लेकिन फिर भी इतने एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो अब कहा गया नहीं तुम अब ऐसे नहीं कि मार खाते रहो, और कसूर क्या है इनका, ठीक है या तो वो कसूर हो सिर्फ इसलिए कि वो एक अल्लाह का नाम लेना चाहते हैं। आज हर चीज की फ्रीडम की बात होती है, विमेन लिब की बात है, ये इस चीज की फ्रीडम हमें चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ये, क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं होनी चाहिए कि जिसका जी जो जी चाहे वो उस रिलीजन को अपनाए, क्या ये नहीं होनी चाहिए? कोई भी इंसाफ वाला इंसान कहेगा कि होनी चाहिए, चाहे कोई मुसलमान नहीं भी है वो भी ये कहेगा। तो यही तो कहा जा रहा है कि फितना नहीं बरपा करना, इतना शद्दू मिन अल कत्ल फइन कातलूकुम फक्तलूहुम, फिर अगर वो लड़े तुमसे तो वो कत्ल करें तुमको तो तुम भी उनको कत्ल करो, कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, पहल नहीं करनी लेकिन जंग का आगाज हो जाए तो फिर यही जज़ाए काफिरों की, अगर वो इनिशिएट करते हैं तो फिर तुम भी लड़ोगे। जो ना खुद दीन पे चलते हैं काफिर हैं, दूसरों को भी नहीं चलने देते तो फिर उनके साथ तो यही होगा ना। فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, ये देखें आप, ये भी आयतें कभी पढ़ लिया करें ना, पिछली आयत को तो लेके बहुत मुसलमानों के सामने उछाला जाता है कि देखो जी इनके ये, तो ये अगली आयत क्या कह रही है, فَإِنِ انْتَهَوْا, फिर अगर वो बाज आ जाए, कौन वो दुश्मन जो है तुम्हारा, जो तुम्हारे तुम्हें घरों से निकालने वाला है, फिर जो तुम्हारे पर ये जुल्म करने वाला है, फिर जो तुम्हारे से लड़ने के लिए आया, फिर भी अगर वो जंग से बाज आ जाए, इस फितना को क्रिएट करने से बाज आ जाए, फइन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो फिर ये नहीं होगा कि अब तुम उनको मारो इसलिए कि पहले तो इन्होंने ऐसा किया था ना, मुझे तो वो नहीं भूलता जब इसने ये किया था, नहीं अब उसने सरेंडर कर दिया, अब वो कहता है कि मैं नहीं सताऊंगा, अब वो जुल्म और उसको छोड़ देता है, तशद्दुद को छोड़ देता है, तो अल्लाह गफूरुर रहीम। और आप देखें अबू सुफियान को, अबू सुफियान ने जब पता है मक्का के वक्त इस्लाम कबूल कर लिया, कोई पिछली उनको बात नहीं दोहराई गई कि आप तो ओहद में आए थे और पूरा लश्कर लेके, और आपने तो हमें इतना नुकसान पहुंचाया था, आप तो थ्रू आउट मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे यहां से बैठे हुए, हम आपको कैसे माफ कर दें? नहीं, इन ताओ फिर वो बाज आ जाए, फाइन अल्लाह गफूर रहीम। ये देखिए इस्लाम की अजमत आप देखें इसमें, ये होता है बड़ापन। फिर ये नहीं हुआ तुमने ये किया था तो वो वाला वक्त याद करो जब तुम ऐसे करते थे, हमें तो नहीं भूला ना, तुम भूल गए हो। नहीं, इसको एक छोटे कॉन्टेक्स्ट में भी देखें आप, छोटे कॉन्टेक्स्ट में इस तरह रख के कि एक दिन आप पावरफुल होती हैं। पहले आपने बड़ी मारें खाई, बड़ी बातें सुनी, बड़ी वो की, एक दिन आप पावरफुल हो जाती हैं, एक दिन आपके हाथ में घर की हुकूमत मसलन आ जाती है और कोई आपके सामने नीचे हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या है, अब पुरानी चीजों को लाके ना किया जाए, अब क्या है, अब छोड़ दो, अब माफ कर दो, अल्लाह भी माफ करने वाला है। ठीक है, तो इसी को घर की टेरिटरी में भी रख के आप देख लें। وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, और लड़ो उनसे यहां तक के फितना ना रहे और अल्लाह का दीन सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए, दीन अल्लाह के लिए सिर्फ हो जाए। क्या मतलब है इसका, कि अब अगर एक दफा लड़ाई शुरू होगी ना, अव्वल तो पहले तुम्हें लड़ाई शुरू नहीं करनी, लेकिन लड़ाई अगर शुरू हो गई है तो अब ये रुकेगी नहीं जब तक फितना खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, फितने को खत्म करना फिर तुम्हारा गोल होना चाहिए। फिर सिर्फ अगर वो सरेंडर कर दें कि भाई वो भाग गए हैं वापस, तो अब आप कहें छोड़ दो अब इनको, नहीं, लड़ो उनसे जब तक फितना ना खत्म हो जाए। एक एक ये भी बात याद रखें, बाद लोग समझते हैं कि इस्लाम में वॉर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में ऑफेंसिव वॉर भी हो सकती है, लेकिन वो किस सूरत में, कि कहीं फितना है तो फितने को खत्म करना, कहीं जुल्म हो रहा है तो उसको खत्म करना, लेकिन वो कौन करेगा? याद रखिए ये वाले जो अहकामात है ना, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ, आप देख रहे हैं जमा के सीधे आ रहे हैं, एक भी बंदे को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे, इंडिविजुअल्स को नहीं, नमाज की तरह ये नहीं है, रोजे की तरह ये नहीं है कि इंडिविजुअल्स को कहा जा रहा हूं यहाँ पे, किसके लिए, पूरे माशरे की बात है, यानी हकूमती लेवल पे डिसाइड होगा और हकूमत ये करेगी कि कहीं जाके किताल कर रही है, अल्लाह के रास्ते में लड़िए, इसका ऑर्डर कौन देगा, हकूमत। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हकूमत होती है ना, वो देखती है कि एक जगह पे एक आदमी दूसरे को कत्ल कर रहा है तो उस कातिल को सजा दी जाए, क्या ये इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है या फिर हकूमत के हाथ में होता है? हकूमत के होता है ना, अगर इंडिविजुअल के हाथ में दे दिया जाए तो क्या होगा, वो तो फिर मुसीबत ही पड़ जाएगी, तो कोई किसी को कत्ल करेगा, कत्ल किसी ने किया था, उसने दूसरे को कर दिया, फिर उन्होंने आके इसको कर दिया, फिर उन्होंने इसके 10 मार दिए, फिर इसने उनके 4 मार दिए, फिर उन्होंने इसकी औरतें उठा ली, फिर उन्होंने उनकी भी औरतें, ये तो फिर तो ये ऐसा नहीं होता, ये वो अंधा कानून नहीं है। क्या होगा, अदालत फैसला करती है फिर सजा दी जाती है, ऐसे ही है ना। इसी तरह किताल फी सबीलिल्लाह भी इंडिविजुअल काम नहीं है कि कोई मस्जिद में खड़ा होके कि इमाम मस्जिद कह दे जी अब ऐसा होगा, कोई खड़ा होकर ये फैसला कर दे जी अब से जिहाद शुरू हो जाएगा फलां मुल्क के खिलाफ, फलां लोगों के खिलाफ, अब हम बस किताल करने जा रहे हैं। किताल जो है वो जिहाद की, यानी जो लास्ट जो उसकी फॉर्म है ना, वो है किताल। इट्स अ पार्ट ऑफ जिहाद, बट टोटली जिहाद किताल नहीं है, किताल इज पार्ट ऑफ जिहाद। ठीक है, एक सेगमेंट समझने जिहाद का, जिहाद तो बहुत ब्रॉड है, जिहाद तो स्ट्रगल को कहते हैं। आज इतना ये लफ्ज बदनाम कर दिया कि ये लफ्ज भी ऐसे लगता है जैसे कि ये पता नहीं कोई, अल्लाह ताला माफ करे, वो गाली है, ऐसा नहीं है। अब जब हमें समझ खुद नहीं है, हम किसी को भी क्या समझाएं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस में होगी, बल्कि जब जुल्म हो रहा, मसलन कहीं फितना है और एक इस्लामी हुकूमत है जिस जो ये डिसाइड करती है कि जिस फितने को खत्म होना चाहिए, अब सेकंड उसकी शर्त ये भी है कि उसके अंदर इतनी पावर हो फिर कि वो फितने को खत्म कर सके, तो फिर वो लड़ेगी इस फितने को खत्म करने के लिए। नंबर वन क्या समझ आई, कि ये इंडिविजुअल्स का काम नहीं है कि वो फैसले करें, कि वो घर बैठे फैसले कर रहे हैं या कुछ छोटा सा ग्रुप बना के उसमें फैसले हो रहे हैं और खुद ही चल पड़े करने, कुछ ऐसे नहीं होगा, हकूमती लेवल के ऊपर होगा। ठीक है, स्टेट बेस्ड बिल्कुल। नंबर टू क्या बात है इसके अंदर, कि फिर वो हकूमत भी इतनी काबिल हो कि वो उसके अंदर ताकत हो कि वो फितने को खत्म कर सके, ये ना हो कि वो खुद बेचारी बिसाखियों पे खड़ी हुई है, वो खुद मरीज है, बीमार है, वो मुल्क भी इतना गरीब है, वो मुल्क भी, कि वो तो खुद अपने आप को नहीं उठा सकता, वो उसने किसी का मुकाबला क्या करना, तो फिर भी नहीं उसके ऊपर है लाजिम के वो ये करे क्या। तो कोई असूलो जवाबित होते हैं, अंधाधुंध कोई चीज नहीं होती। जैसे आज बिल्कुल ही अंधे हो गए, अंधाधुंध जिसका दिल करता है वो उठ के तलवार उठा लेता है, जिसका दिल करता है वो उठ के हथियार उठा लेता है, और बस समझता है कि बस मैं तो अल्लाह के रास्ते में निकल खड़ा हूँ। ऐसे नहीं है ये, वो नमाज रोजा नहीं है जो आपको इंडिविजुअली एक एक को हुक्म दिया गया। तो अब जब वो तुम्हें मजबूर कर दे, तुम उनसे वो स्टार्ट कर दे और तुम उनसे जंग करने शुरू कर दो, तो अब ये जंग ऐसे नहीं खत्म हो जाएगी, अब जब तक ये फितना ना खत्म हो, क्योंकि असल मकसद ही है कि फितना खत्म हो, ये जबरी निजाम खत्म हो, ये दीन से लोगों को रोकना ये खत्म हो, मजहबी आजादी मिले लोगों को, ठीक है। और ये कितना बड़ा फितना कि वो जगह आप सोचें, जिस जगह को आपने फर्स्ट पारे का अगर एंड देखा हो, तो आपने देखा पढ़ा आपने कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा को बिल्ड कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं, वो उन्होंने ये घर क्यों बिल्ड किया, वो अल्लाह से क्या दुआएं कर रहे हैं कि ये एक तौहीद का मरकज, शिर्क ना यहाँ पे हो। और वो जो घर बना ही इसलिए था कि ये तौहीद का सेंटर बने, वहां पे ही आके शिर्क शुरू हो गया, वहां पे 360 बुत रख दिए उन्होंने। ये तो था ही अल्लाह ताला को कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह का कलमा यहाँ पे लेने के लिए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं कितनी की, और कितनी उन्होंने उनकी जो लास्ट जो विल थी, जो उन्होंने जो वसीयत भी की थी याकूब अलैहिस्सलाम ने, और उससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और इनकी भी बात आती है कि उन्होंने क्या कहा, फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मरना ना मगर मुस्लिम। उनकी तो जिंदगी का एम ही तौहीद था, तुमने उनके बनाए हुए घर पे बुत रख दी, तो इसको तो बुतों से पाक करना ही है। ये भी फितना है कि यहाँ पे शिर्क हो रहा है। और फिर देखिए, किसी का राइट नहीं था कि किसी को हज और उमरे से रोके, कभी नहीं किसी का राइट। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये किया कि उमरे से ही रोक दिया, और हज पे आने की तो क्या किसी को इजाजत ही नहीं थी, कुछ सर कटवाने थे, तो इन्होंने क्या समझ लिया कि ये अब हमारी इजारादारी, हम मालिक हो गए इस घर के, हम जिसको चाहेंगे इजाजत दें आने की, जिसको चाहेंगे नहीं आने की इजाजत दें, ये उनके हाथ में नहीं था। तो इसलिए ये हमें यहाँ पे समझ आती है कि फितना क्या चीज होती है, और फितने से रोकने के लिए, फितने को खत्म करने के लिए फिर लड़ना, यहाँ पे उसको कहा गया कि ये तुम्हारा फिर एम होना चाहिए। और क्या हो जाए, वयकून अद्दीनु लिल्लाह, और दीन अल्लाह का लिए हो जाए, यानी इस जगह में फिर और कोई दीन बाकी ना रहे, फिर अल्लाह की हाकमियत आ जाए यहाँ पे, फिर ये शिर्क यहाँ से फिर खत्म हो जाए, फिर तब तक लड़ना होगा। फला उदवान इल्ला अला ज़ालिमीन, फिर अगर वो रुक जाए तो तुमने नहीं कोई ज्यादती करनी, मगर सिर्फ फिर जालिमों के ऊपर होगी, जो जालिम है, जो फिर भी नहीं रुकते, और फिर भी फतह मक्का के मौके पर भी बास कुफार को मारा गया था, कत्ल किया गया था, देखे को जो नहीं रुक रहा, जो जो तुला हुआ इस चीज के ऊपर, तो फिर उसके साथ तो फिर यही होगा। लेकिन अदरवाइज जो फिर रुक जाए, जो सरेंडर कर दे और नहीं लड़े, और ये फितना वगैरह खत्म कर दें, शिर खत्म हो गया, छोड़ दिया इन चीजों को उन्होंने, तो फिर ठीक है, फिर तुमने भी नहीं आगे ज्यादती करनी कि नहीं हमने मारना है, हमने पिछले बदले लेने। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम वल हुरुमात क़िसास, यानी शहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुरमत वाले महीने, पहले तो ये समझे कि वो कौन सी हैं हुरमत वाले महीने। हुरमत वाले महीने, एक अलग से महीना रजब का, रजब, ठीक है। दूसरा जो ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ये 4 मंथ्स हैं जो हुरमत वाले, ठीक है। हुरमत वाले महीने, इनके अंदर ये जो रजब का महीना था, इसमें ये लोग उमरा करने के लिए जाते थे, अरब में ये था, और ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम ये हज के लिए थे। तो मुशरिकीन मक्का में भी ये कानून समझ लें था कि इन महीनों के अंदर बिल्कुल अमनो अमान किया जाता था, कोई किसी को ना लूट मार करता था, ना कत्लो गारत करता था, ना कोई जंग होती थी, कि सेफ एक पैसेज दिया जाए मुसलमानों को, नहीं लोगों को, क्योंकि ये आज उम्रे पहले भी होते थे ना, कि लोगों को सेफ पैसेज दिया जाए कि वो आए और आके हाजुमरा करें, दूर दूर से लोग आते थे, उनको रास्ते में ये कोई खतरा नहीं होता था कि हमें कोई लूट लेगा, कोई मार देगा, कोई कुछ होगा, तो सेफ्टी दी जाती थी। तो इन महीनों के अंदर किसी को नहीं कुछ कहा जाता था। अब जब मुसलमान, जब मैंने आपको बताया ना 7 हिजरी में जब मुसलमान उमराए कजा करने के लिए आ रहे थे, तो उनको एतबार नहीं था ये काफिर जो हैं अब हमारे साथ हो सकता है कि कुछ करें, कोई जंग करें, तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम हुरमत वाले महीने में उनके साथ जंग का जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये ज़िकादा का महीना है जो शारुल हराम में से है, तो क्या कर सकते हैं हम। तो इसके जवाब में ये आयत उतरी। अब उनको पता होना चाहिए ना कि हमारी क्या लिमिटेशन है, हम क्या, तो फरमाया गया शारुल हराम बिशहरे हराम, यानी अगर वो वायलेट करें हुरमत को इन महीनों की, तो तुम भी फिर उनसे लड़ो। ने वो अगर इनके तकद्दस को नहीं समझ रहे, इनका तकद्दस पामाल कर रहे हैं इन महीनों का, इन मोहतरम महीने हैं ना ये, एहतराम वाले महीने, इनकी हुरमत को ही वो नहीं कुछ जान रहे और उसको पामाल कर रहे, तो फिर तुम भी उनसे इसमें लड़ सकते हो। वल हुरुमात क़िसास, और हुरुमात का क़िसास है। हुरुमात क्या है, ये जो भी ये वायलेशंस हो रही हैं इनका क़िसास है। जो मोहतरम चीजों में जो भी ऐसा कोई मामला किया जा रहा है, जो मोहतरम चीजें हैं, मसलन है ये महीने मोहतरम है, जो अल्लाह ताला का घर मोहतरम है, मस्जिद हराम ये मोहतरम जगह है, यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इनको वायलेट करता है तो उसका किसास है फिर, यानी बदला लिया जाएगा फिर। फमन यातदा अलैकुम, फिर ये याद रखना जो कोई ज्यादती करे ना तुम पे, तो तुम भी ज्यादती करो उस पर मानिंद उसके जो ज्यादती की उसने तुम पर, जो ज्यादती करे तुम पर। तो फातदु अलैहि का मतलब क्या है, तुम ज्यादती करो उस पर, इसका मतलब ये नहीं कि जो मुसलमान इन रिटर्न करेगा वो ज्यादती होगी, बल्कि लफ्ज को वैसा ही लफ्ज लाया गया, इक्वल लफ्ज इसलिए लाया गया ताकि पता चले कि बदला भी इक्वल होगा, मगर उसको ज्यादती नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि ज्यादती तो वो है ना जो बुरी चीज है ना, किसी ने किसी के साथ गलत किया है, ये गलत नहीं होगा फिर, ये सिर्फ बदला होगा फिर। लेकिन एतदो क्यों आया, एतदो इसलिए आया कि ताकि बताया जाए कि बराबर जैसी उसने की उसके माने तुमने करनी, उतनी ही तुमने करनी, उससे ज्यादा नहीं, उससे बढ़ के नहीं। जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया, इतनी मिसालें आपको दी है ना, कि जिसने जैसी की होगी, मुजरिम को एक तो सजा देनी है और उतनी सजा देनी जितनी के उसने की, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कहीं कोई लड़ाई हो रही है, कोई ऐसा वो आपके साथ ज्यादती करते हैं, तो अब आपने ये नहीं करना कि इन्होंने हमारे साथ उस वक्त भी ऐसा किया था, इन्होंने तो हमारे साथ वहां पे ऐसे, जब हम मक्का में थे तो ये हमारे साथ ऐसे करते थे, और उस सारियों को मिला के और फिर अपना भी ग्रज और अपना भी गुस्सा और ये सब करके फिर उनके साथ वो कर रहे हैं, नहीं। देखिए इस्लाम के अंदर ना हुकूमत बढ़ाने के लिए कोई जंग नहीं की जा सकती, किसी जगह के रिसोर्सेज लेने के लिए नहीं कोई जंग की जा सकती, कोई पॉलिटिकल गलबे के लिए, सियासी गलबे के लिए नहीं जंग की जा सकती, लूट मार के लिए नहीं जंग की जा सकती, इनमें से कोई जंग फी सबीलिल्लाह नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब किसी ने फितना बर्पा किया, जब किसी ने इनको निकाला, जब किसी ने जुल्म और जबर किया, जब किसी ने ये करा कि उनको ये आजादी नहीं कि वो अल्लाह का नाम ले सके, तो फिर अब मुसलमानों को इजाजत दी जा रही है कि तुम उतना ही बदला ले लो, वो अगर तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं और तुम्हें साथ जंग करते हैं तो फिर अब तुम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मैंने इसकी बता दी ना कि इसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और समझने की ये बात है कि देखें, जब ज्यादती का मामला आता है ना, इंसान ज्यादती करने पे तुल जाता है, तो वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फियर इन लव एंड वॉर, ये लोगों का स्लोगन है ना, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपको बताया, निहत्ते लोगों को नहीं मारना, अमला को नहीं नुकसान देना, ऐसे नहीं करना, तो ये इतने सारे रूल्स हमें बताए गए ताकि ज्यादती ना हो किसी के साथ। सब फेयर नहीं है जंग में कि जो मर्जी चाहो करो, मारा किसी ने, करा किसी और को, 10 औरतें भी होती है ना, लड़ाई शौहर से होती है, तो कहती हैं अच्छा इसने मुझे इतना सताया, बदुआएं किसको देती हैं, अल्लाह तेरी बहन की भी घर उजड़े, जैसे मेरा तू कर रहा है तेरी बहन के साथ भी उसका हस्बैंड ऐसे कर, वो बहन का क्या कसूर, तुम्हारी बेटियों के साथ भी ऐसे है, हालांकि वो अपनी भी बेटियां होती हैं, उनके भी अल्लाह करे ऐसे आगे आ जाए। देखें जो बेकसूर होता है ना या मजलूम होता है, वो भी जो भी अपना बदला लेगा वो सिर्फ उसी से दे सकता है, और उतना ही ले सकता है जितना कि उसके ऊपर जुल्म हो, इतनी इजाजत है सिर्फ, क्योंकि ये इंसाफ है, सिर्फ उतनी इजाजत है। माफ कर दिया तो फिर तो बहुत बड़ी बात है ना, लेकिन इजाजत भी कितनी है, सिर्फ उतनी। लेकिन इससे भी आगे बढ़ जाना, बेकसूरों को बीच बीच में घसीट रहे हैं, उसको भी ला रहे हैं, उसको भी ला रहे हैं, कि जब लड़ाइयां घरों में भी होती हैं तो आप देखेंगे कितनी ज्याती पे हर फरीक उतर आता है, एक ने एक किया होता ना तो दूसरा कहता है जब तक मैं दो नहीं करूंगा ना इसके साथ, मैं इसने एक थप्पड़ मारा मैं जब तक दो ना मारूंगा मुझे कहाँ चैन आना, उसने एक गाली दिया ना मैं 10 सुना के जाऊंगी इसको। तो नहीं, ये कानून है कि जो भी ज्यादती करे, ये सिर्फ जंग की बात नहीं हो रही, आम जिंदगी में भी जितना कोई आपके साथ करे उतना सिर्फ, अब ये भी जहन में रखना चाहिए ना। देखें एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, उसने कहा था मेरा गुलाम है वो मेरे चोरियां करते हैं मेरे माल में से, तो फिर मैं उनको बड़ा मारता आरता हूँ ये करता हूँ, तो मेरा अल्लाह के पास क्या मामला होगा, वो फिक्र भी होती थी ना उनको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यामत के दिन ऐसे होगा कि जो वो तुम्हारे साथ ज्यादती करते थे, जो हमारा माल लूटा जो भी किया, वो एक पलड़े में होगा, और जो तुम उनको मारपीट करते थे दूसरे पलड़े में होगा। अब जो वजनी हो गया फिर उसको फिर पे करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए ना, अगर तुम्हारी मार ज्यादा बढ़ गई उनकी चोरियों से तो तुम्हें पे करना पड़ेगा, और उनकी चोरियां बढ़ गई तो उनको पे करना पड़ेगा। तो वो इतना डर गया कि उसने उनको आजाद कर दिया अपने गुलामों को। तो इसी तरह है, किसी ने आपके साथ जाती की आप कहते हैं ठहर जा मैं बताती हूँ उसको, अब आपने उससे भी ज्यादा बढ़ के बदला ले लिया, तो जालिम कौन हो गया, पहले आप मजलूम थे जब तक वो आपको कुछ कह रहा था, अब आप जालिम बन गए जब आपने इतना बड़ा बदला लिया कि उससे भी डबल कर दिया जो उसने किया था। और अक्सर ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि हम जब गुस्से में आते हैं या ज्यादती पे उतरते हैं ना, तो हम वे नहीं कर पाते कि उसने कितना किया और मुझे कितना करना, वो जो रेज अंदर से आती है ना, वो जो गुस्सा अंदर से आता है, और ये कि उसने किया क्यों ऐसे और मेरे साथ इसने ऐसे किया, वो जो आपको उबाल आता है ना वो उस ज्यादती पे उभार ही देता है, ज्यादती हो ही जाती है। तो इंसान को सिर्फ इजाजत उतनी है जितनी उसके साथ ज्यादती हुई है, जिंदगी में कहीं पे भी देख लें, आप किसी रिश्ते में भी देख लें, आप कहीं पे भी माफ करना दरगुजर करना वो आला अखलाक है, वो अंबिया का अखलाक है। लेकिन अगर किसी को बदला लेने का बहुत भी हो तो सिर्फ उतना ले सकता है, बस इससे आगे नहीं। अब आप देख लें कि फिर हम क्या करते हैं, आप ऊपर के लेवल का देखें, इतने ऊपर के लेवल पे जहां पे जंगें हो रही हैं वहां तक भी ज्यादती की इजाजत नहीं है, जहां पे काफरों के साथ जंग की जा रही हो, जहां पे एक तरफ मोमिन और वो हक पे हैं और उनको सताया गया है, उनको भी कहा गया नहीं लेकिन ज्यादती नहीं करनी। और कहां ये कि हम घर घर में आज ज्यादतियां हो रही हैं, अपने घरों के अंदर हम जो कर रहे हैं वो उसके ऊपर नहीं कोई पकड़ होगी, अल्लाह का कानून तो जंगों के लिए भी वही है और घरों की जंगों के लिए भी वही है, चाहे मुल्कों की हो चाहे खानदानों की हो। तो फिर आप बताइए कि फिर इसके बाद हम कहाँ खड़े होते हैं, और ज्यादतियों में हम किस हद तक बढ़ जाते हैं। वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, क्योंकि तो अल्लाह को पता है ना, जब आमने सामने लड़ाई झगड़े होते हैं, मैदाने जंग हो या घर का मैदाने जंग हो, तो फिर जज्बात, फिर जुबान, फिर हाथ, ये काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वही करेगा जिसके अंदर अल्लाह का डर हो, और यही फर्क है एक मोमिन में और गैर मोमिन। मोमिन अल्लाह से डरता ही रहता है चाहे वो जंग में ही हो, जैसे मैंने आपको हज़रत अली की मिसाल बताई, वो उतना ही बदला लेता है जितना कि उसके साथ ज्यादती हो। जबकि जो गैर मोमिन होता है ना, जिसमें अल्लाह का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, वो उसको याद ही नहीं रहता कि कोई खुदा भी है जो मुझे देख रहा है, उस वक्त नहीं उसको याद रहता, वो जुनूनी हो जाता है, जैसे वो कहते हैं ना गुस्से में भी पागल हो जाना, जंगी जुनून तारी हो गया इस पे, उसको जुनून कहते हैं ना, इसलिए इंसान में कोई कोई सेंस ही नहीं रहती कि वो कर क्या रहा है, क्या क्या रहा है। तो ये मोमिन नहीं होता, ऐन जंग के जब जब ज्यादती का बदला लिया जाए ना, उस वक्त भी कहा गया वत्तकुल्ला, सुभान अल्लाह, वालमु अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, ये याद रखना अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। मतलब तुम्हारे अंदर तकवा नहीं होगा ना तो तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद नहीं होगी। डरते रहना अल्लाह से, ये याद रखना अल्लाह मुझे देख रहा है, तुम्हें अल्लाह ताला की नजरों का एहसास होना चाहिए। और ये सोचना कि मैंने कोई मेरे से कोई ज्यादती ना हो जाए कि मैं अल्लाह की पकड़ में आ जाऊं, ये है तकवा। यहाँ पे ये नहीं होगा कि तुम तो अल्लाह की हदों को क्रॉस करते जाओ फिर भी अल्लाह तुम्हारा ही साथ देता जाए, ऐसे नहीं होगा। अल्लाह जालिमों के साथ नहीं होता, चाहे हम कहें ओ हम तो मुसलमान है, हम तो जो मर्जी करते रहे, हम तो जितना मर्जी जुल्म कर लें, किसी ने हमारे साथ एक किया हम 10 करेंगे इसके साथ, और फिर भी अल्लाह की मदद हमारे साथ ही होनी चाहिए ना, क्योंकि हम कलमे वाले तो हम हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने तो तुम्हें कहा था कि तुमने नहीं करना उससे ज्यादा जितना तुम्हारे ऊपर ज्यादती की गई, फिर तो जालिम में और मजलूम में कोई फर्क ही नहीं रहा ना। तो ये आसान मामला नहीं है, ये अल्लाह की कानून है, उसकी हदें हैं, इनको भी तो सोचो, ये भी तो तुमने ही माननी है। अगर तुम इनको नहीं मानोगे तो अल्लाह की मदद से महरूम हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह माल मुत्तकीन है, उनके साथ है उसकी मदद, वो उनके साथ है। وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। खर्च करना यानी जब अल्लाह ताला के दीन की बात आए, ये कॉज हो जिसमें दीन की नशरो इशाअत हो, जिसमें दीन के लिए कोई काम करने के लिए हो, चाहे उसकी नशरो इशाअत की जाए, चाहे उसके लिए लड़ना हो, चाहे उसके लिए यानी किसी तरह के भी अल्लाह ताला के दीन को जब मदद की जरूरत हो, चाहे वो कोई मस्जिद बनानी है, चाहे कोई मदरसा बनाना है, चाहे आपने कोई मटेरियल आगे लोगों को देना है जिससे अल्लाह ताला की पहचान उनको हो, दावा कोई कोई काम करना है, इसके लिए सबके लिए कोई पैसों की जरूरत ही होती है ना। तो इन्फाक करो अल्लाह के रास्ते में, और वला तुल्कु भी ऐदिकुम इल तहलुका, और ना तुम डालो अपने हाथों को यानी अपने आप को, मतलब क्या है हाथों को कहने से, मतलब कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, यानी तुम हलाक हो जाओगे अगर तुम नहीं करोगे ये इंफाक। क्यों हलाक हो जाओगे तुम? हलाकत में डालने का मतलब ऐसे अपने आप को किसी आग के गड़े में डाल देना, किसी जगह से ऊंची जगह से नीचे फेंक देना, हम उसको कहेंगे इसने अपने आप को खुद हलाकत में डाल दिया, ऐसा ही है ना। तो इंफाक ना करने से कैसे हलाकत हो जाएगी? इसलिए कि जब आप अल्लाह ताला के दीन की खातिर नहीं खर्च करेंगे तो देखें दीन की जो दूसरे लोग हैं उनको तो दीन में बुलाना तो दूर की बात है, आपके जो अपने मुसलमान हैं उन तक भी कोई इल्म ना पहुंचेगा, ना उनको अपने दीन का कोई पता होगा, ना उनके पास कोई जगह है जहां के ऊपर वो जहां बैठ के वो अल्लाह के दीन की कोई बात कर सके, ना उनके पास कोई जगह जहां पे कोई नमाज पढ़ सके या कोई सीख सके, कुछ सिखा सके, दीन की बातों की मालूमात हासिल कर सके, ना कोई वैसा मटेरियल है। अगर सब लोग ऐसे करने लगे और कह रहे हैं और सोचें ये कि कोई बात नहीं, अगर हम नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, तुम अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो, क्योंकि ये दीन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, वो जो आज हुआ है, ना दीन सीखा गया, ना सिखाया गया, ना इसके ऊपर खर्च हुआ, मदारिस की हालत इतनी बुरी, वो ऐसे रिमोट एरियाज में जहां तक कोई जा ही नहीं सकता, तो फिर क्या हुआ, लोग अल्लाह के दीन से नावाकिफ रह गए ना। जब दीन पे खर्च नहीं किया जाएगा, जब यूनिवर्सिटीज और ये तो इतनी मॉडर्न और इतनी बड़ी और जबरदस्त, और अल्लाह के दीन को सिखाने की जगह कैसी, जब मस्जिदों की हालत इतनी मखदूश, वहां पे फटे हुए कारपेट बिछे हुए हैं, जहां नमाजों की हालत क्या है, छतें टपक रही हैं, कुछ ऐसी चीजें, तो वो फिर बताएं क्या हाल होता, क्या हाल होगा ऐसे फिर दीन का, वो तो एक बेचारगी का दीन ही होगा ना। और अगर नहीं खर्च करेंगे तो अपने मुसलमानों का भी मुसलमान रहना मुश्किल होगा, याद रखिए। और आज ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम खर्च करें ताकि, और सही जगह पे खर्च करें ताकि दीन की नशरो इशाअत हो, नशरो इशाअत समझते हैं, ये दीन का काम आगे बढ़े, ताकि हम इन मुसलमानों को समझ हो। देखिए ना, अब ये ना मसलन पढ़ा पढ़ा जा रहा तो हर बार कंफ्यूजन ही रहेगी ना, पता नहीं क्या बात है, लड़ने का क्या चीज है, ये इल्म ना आगे सिखाया जाए, ना इसके लिए कोई कोई जरिया ही ना हो, तो क्या होगा फिर? दीन को भी जरूरत है कि इसके ऊपर खर्च किया जाए, और सिर्फ खर्च करना माल ही नहीं, बहुत जगह के ऊपर आपका वक्त जो होता है वो खर्च करना जरूरी होता है। देखिए तीन ही चीजें हैं ना, एक जान दे देनी अल्लाह के रास्ते में, एक माल दे देना अल्लाह के रास्ते में, और एक है वक्त दे देना अल्लाह के रास्ते में, इस जिंदगी को लगा देना अल्लाह के रास्ते में। ये तीन ही चीजें आप खर्च कर सकते हैं। अब इनमें बहुत से लोग माल लगाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं वक्त नहीं लगा सकते, वक्त देने को कोई भी तैयार नहीं है, तो माल का क्या करेंगे आप? आप एक बिल्डिंग बना के खड़ी कर दें, वो आएगा ही नहीं वहां पे, तो क्या होगा? तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, खर्च करो अल्लाह के रास्ते, वरना हलाकत में पड़ जाओगे। आगे की जनरेशन तक दीन कैसे पहुंचेगा बताएं? तो हलाकत है ना फिर, ये अपने आप को हलाकत में डाल देना है अगर नहीं खर्च किया तो। वह आसीन और एहसान करो, यानी ये जो तुम स्पेंड करोगे ना, ये भी बेहतरीन तरीके से स्पेंड करो। ये नहीं बिल्कुल रद्दी चीजें हैं या बिल्कुल ऐसे ही के बस सर से उतारने वाला काम, नहीं, ब्यूटिफुली। इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह मोहब्बत करता है मुहसिनीन से, एहसान करने वालों से। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।
यसअलूनका अनिल अहिल्ला قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين